फिर आगे रूह की बातें हैं, आयत 85 में, रूह की हकीकत क्या है ये अल्लाह जानता है। मक्का वालों ने अल्लाह के नबी से जो सवाल किए तो उसमें से एक सवाल ये था कि ये रूह क्या होती है, तो क्या कह दीजिए, कुले रूह मिन अम्री रब्बी, ये अल्लाह का हुक्म है और तुम इसके बारे में बहुत थोड़ा इल्म दिए गए हो। कुरान में रूह का लफ्ज़ तीन चीज़ों पर आता है, एक तो जिस्म के अंदर पुकने वाली रूह, यानी जो है तो जिंदा है और चली गई तो आप मर गए, दूसरा वही, क्योंकि वही इलाही भी तो रूह ही थी ना, जो हज़रत जिब्राइल, इसी से रूहुल अमीन का लक़ब है हज़रत जिब्राइल का, क्योंकि हज़रत जिब्राइल ही वही हर नबी के पास लाए, ख़ास तौर पर कुरान, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए कि जब आप इस रूह के तकाज़ों को पूरा नहीं करते तो आप अंदर से मुर्दा हो जाते हैं। कभी कभी आपका दिल दुखी होता है, कभी खुश है, कभी आप उदास हैं, कभी आप बड़े दूसरी तरह महसूस करते हैं, तो असल में इस रूह को। और इसी तरह रूह का लफ्ज़ हज़रत जिब्राइल के लिए भी आया है, तो ये तीन मानों में से तीनों का इल्म हमें ज़्यादा नहीं है। करें क्या, कुरान को पढ़ेंगे, आप रूहानी तौर पे मजबूत होंगे, क्योंकि आयत 86-87 में आता है, और नबी सल्लम पर जो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल था ना, वो क्या था कि आपके ऊपर कुरान नाजिल किया गया। और आज अगर आप और मैं नबी सल्लम का सबसे बड़ा फजल देखें तो वो नज़ूले कुरान है। और नबी को यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम आपसे ये वही छीन लें तो आप तो नहीं इसको वापस ला सकते, ये अल्लाह की रहमत है। चलिए आपके कल मकाम को तो एक साइड पे करके ज़रा अपने ऊपर लें, क्या आप और मैं इस वक्त इस फजल को महसूस करें, हाफ़िज़ों के सीनों से कि कुरान छिन जाए, आपने कुरान का तर्जमा याद किया भूल जाए, तकलीफ़ होती है। तो कभी कभी जो हम डाउन होते हैं ना, हम स्पिरिचुअली बड़े सिक फील करते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे हाथों से कुरान छूटा होता है। आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, आप देखेंगे कि दिन का बड़ा हिस्सा आपके हाथ में सपारा होता है, क्योंकि आपको लफ्जी तर्जमा याद करना है, आपको ग्रुपिंग में सुनाना है, फिर आपको इसका टेस्ट देना है, फिर आपको इसकी असाइनमेंट करनी है। आप इतने बिजी हो जाते हैं, इतनी मज़े की लाइफ होती है कि फिर उदास होने का, दुखी होने का तो वक्त ही भी नहीं रहता। इसीलिए इस कुरान के लिए चैलेंज किया गया है 88-89 में कि इस जैसा कोई कलाम हो तो ले आओ, कोई पेश ही नहीं कर सकता। पीछे भी हमने पढ़े चैलेंजेस कुरान में मुख्तलिफ जगह पे, यहाँ भी है, यहाँ पूरे कुरान की बात की कि पूरी दुनिया के लोग मिल जाएंगे, इस कुरान जैसा कोई नहीं बना सकेंगे। और आप देखिए आज दुनिया की तरक्की देख लें, साइंस भी बढ़ गई और भी बहुत कुछ, कुरान जैसा निज़ाम ज़िंदगी कोई ना दे सका। फिर मक्का वालों के कुछ मुतालबे हैं आयत 90-93 में, और ये वो मुतालबे है जिसमें मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ, ना मानने के 100 बहाने। बच्चे को भूख नहीं होती ना तो माँ जो मर्जी उसको खिला दे, रख दे, पूछे नहीं खाता, फिर आखिर में माँ क्या कहती है, छोड़ दो, इसको भूख नहीं है। जुमला लिख लीजिए, जिनको हिदायत की भूख नहीं होती ना, वो हिदायत की तरफ बुलाने वाले के आगे नखरे ही करते हैं। आप कहते हैं आइए ना, इधर सुनिए, मसरूफ़ बहुत है, अच्छा यहाँ आ जाए, नहीं सुबह में बिजी हैं, अच्छा वहाँ आ जाएँ शाम में बिजी हैं, अच्छा वीकेंड पे आ जाएँ तो दावतें और बहुत हैं। वही बात है, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मुझे दुनिया में क्यों भेजा अल्लाह, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। अफसोस की बात है कि एक इंसान जिस काम के लिए दुनिया में भेजा गया उसी के लिए वक्त ना मिला, और हम अपने आप को इसमें चेक कर सकते हैं। फिर आगे आयत 94-96 में, तमाम रसूल इंसान ही थे, ये कितना क्लैरिटी का मैसेज है। वमा माना नास के लफ्ज़ को अगर आप देख लीजिए, और हमने लोगों को और नहीं मना किया किसी चीज़ ने लोगों को जबकि उनके पास हिदायत आ गई और वो उस पर ईमान ले आए, हाँ उसमें से एक बात वो क्या कहते थे, इल्लान कालू अबासल्लाहु बशर और रसूला, क्या अल्लाह ने एक बशर को रसूल बनाकर भेजा। कितनी अजीब बात है कि हर दौर में रसूल की ज़ात के साथ एक मसला ज़रूर डिस्कस हुआ, कोई कहते ये इंसान क्यों है और कोई कहते कि ये इंसान नहीं है। आज हम क्या कहते हैं, इंसान नहीं थे, कल वाले कहते थे ये इंसान है, तो मान लीजिए कैसे लोगों को अभी हिदायत की भूख नहीं लगी। इसीलिए फिर आगे आयत 97-99 में गुमराहों का अलमनाक सज़ा अंजाम दिखाया गया है, कैसे लोग जो दुनिया में हिदायत की सारी चीज़ें पास होने के बावजूद भी हिदायत की तरफ नहीं आते, अल्लाह ने उनके लिए जहन्नुम का एक कैद खाना, एक जेल रखी है, और फरमाया कि कुल्लमा खबत जिदना हम सईरा, जब टेम्परेचर कम होने लगेगा ना जहन्नुम का, हम थोड़ा सा ईंधन और डाल देंगे। कभी आपने तंदूर पे रोटी बनाने वाली को देखा हो? ज़रा सी आग ठंडी होती है ना तो वो कुछ और लकड़ियाँ डालती है, यानी अनएंडिंग सप्लाई दी जाएगी जहन्नुम को ताकि वो खूब गर्म होती रहे। अब 4 दिन की ज़िंदगी गुजर गई, आगे से आप अपना अंजाम देख लीजिए। अगली आयत है 100, इंसान की तंग दिली। कुल लो अन्तुम तमलिकू न खजाइन रहमती रब्बी, कह दीजिए कि अगर तुम मालिक होते अल्लाह की रहमत के खजानों के, तुम ज़रूर उसको रोक लेते कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। और इंसान है ही बड़े थोड़े दिल का। आप देखिए, आज छोटी छोटी बात पे टैक्स लगते हैं ना, बिल आता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल। अगर आपको ऑक्सीजन का बिल आता, अगर ऑक्सीजन इंसानों के हाथ में होती तो क्या आज तक टैक्स ना लग चुका होता? बारिश पे टैक्स ना लग चुका होता? अल्लाह ने हर चीज़ खुली छोड़ दी और इंसानों ने उसको तंग कर लिया। फिर आयत 101 से 103 में गुमराहों का अलमनाक अंजाम बताया जा रहा है। वलकद आते ना मूसा की बात से अब दोबारा सूरत की एंड की तरफ आते हुए बनी इसराइल की बात है कि उनको भी अल्लाह ने 9 निशानियां दी थी लेकिन बनी इसराइल ने नहीं माना। डिटेल से पढ़ चुके हैं, क्या पता चला कि वक्त का नबी भी सामने आ जाए? जिनके दिल में हिदायत की तलब नहीं होती वो नहीं मानेंगे। और फिर आयत नंबर 104 में क़ुर्बे क़यामत यहूद एक मुकाम पर जमा कर दिए जाएंगे और वहीं फिर उनका हशर हो जाएगा। आज भी आप देखिए, पूरी दुनिया से जमा कर कर एक छोटे से खत्ते में इस कौम को अल्लाह ने आबाद कर दिया। और अब आखिर में कुरान पाक की अजमत और तासीर का तذکرہ। आप देखिए कि यहाँ कुरान का बड़ा खूबसूरत फ्लो बनता है, यानी आयत 105 से 109 में वबिल हक़ी अनज़लनाह वबिल हक़ी नज़ल की बात करके कुरान है भी हक और हक़ के साथ भेजा गया और आपको हमने खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना दिया। और ये कुरान क्या है जो हमने आप पे खोल खोल के बयान कर दिया रुक रुक के, ताकि आप लोगों को बताइए। तो कुरान की अजमत और इसकी तासीर से आज तक कोई इनकार नहीं कर सका। इल्म वालों को तो इसका खूब ही पता है, और ख़ास तौर पे आप देखिए आयत 109 के एंड पे सजदा है व यजीदुहुम खुशुआ। क्या पता चला कि इस कुरान को पढ़ के समझ भी आनी चाहिए। इस कुरान के बाद बंदे को अल्लाह की मर्ज़ी भी पता हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए वो क्या है? वह यखिरून लिलअज़्क़ान यबकून, वो ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं, रोते हैं, और वो ज़्यादा करती है उनको खुशू में। ज़रा अपने ऊपर लीजिए, अभी तक के तकरीबन 15 पारों में कितनी दफ़ा मैं रोई? कुरान की तिलावत के दौरान कितना रोना आता है? जब रमज़ान में तरावी में कुरान सुनती हूँ तो कैसा लगता है? असल पता है क्या है? हमें समझ नहीं आता। ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट कौम भी बहुत अच्छी है, दिल भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन समझ नहीं आता। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसा वक्त दे और हमें तौफीक भी फिर दे कि हम इस कुरान को समझें। आयत 110 में सारे अच्छे नाम और सिफात अल्लाह ही के लिए हैं, बस उसी को पुकारो। कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान, यानी अल्लाह कह लो या रहमान कह लो, अय्यम्मा दोनों में से जिस एक से तदु तुम पुकारोगे, फलहुल अस्माउल हुस्ना, तो अल्लाह ताला के नामों को याद कीजिए, इसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिए। हर दिन ही शायद इस पे बात होती है कि अपना गोल बनाइए कि रमज़ान के बाद आपने एक एक नाम को लेना है, यानी इस सेशन को सुनने के बाद जो पहली मुमकिन कोशिश है, वक्त है, आप उसमें अल्लाह के नामों पे गौर व फिक्र कीजिए। और पढ़ने से ज़्यादा इसको सुनने और समझने का फ़ायदा होता है। और आखिरी आयत जिसके बारे में उलमा भी बहुत कुछ लिखते हैं, और वो क्या है? तौहीदे बारी ताला का ख़ज़ाना। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, आप कह दीजिए सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने औलाद नहीं बनाई, और कोई उसकी बादशाहत में शरीक भी नहीं है, और कोई भी उसका वली नहीं। वलम यक़ुल लहू मिन वली मिन अज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा, आप देखिए कि अल्लाह की तारीफें और अल्लाह को, ये सूरत शुरू किस लफ्ज़ से हुई थी? सुबहान से। और आखिरी आयत में क्या है? पहली को आप लगा लिए सुबहान अल्लाह, आखिरी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, और कब्बिर हो तकबीरा में क्या है? अल्लाह अकबर। और अगली सूरत कहफ किससे शुरू होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कुरान का इम्तिज़ाज। और आपको पता है कि एक मुसहफ में तो सूरत कहफ और बनी इसराइल साथ साथ है ना, एक पहले एक दूसरी, हालांकि नज़ूल में इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। आप हैरान होंगे कुरान का मिजाज पढ़ते सुनते वक्त कि मुख्तलिफ सूरतें कई कई साल के फ़र्क पे नाजिल की हुई सूरतें कुरान में जब जुड़ती हैं तो ऐसे लगता है मोती के साथ मोती जुड़ा हुआ है।